नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के 13वें एपिसोड में। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि पॉडकास्ट आने में थोड़ा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी जिस वजह से मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आज की कहानी एक ऐसे केस की है जिसे 7 साल लग गए और वो फिर भी सॉल्व नहीं हो पाया, और उसके बाद जब ये केस हमेशा के लिए बंद हो रहा था तो ये किसी तरह से सॉल्व हो गया। आज की कहानी है खंडवा शहर की। खंडवा शहर मध्य प्रदेश में है और इस शहर खंडवा की पहचान बहुत ही मशहूर गायक किशोर कुमार, उनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार, इनका जन्म खंडवा शहर में ही हुआ था। यह शहर खंडवा इंदौर से करीब 130 किलोमीटर दूर है। तो आज की कहानी ऐसी है कि एक एसपी है, बहुत ही फेमस एसपी, आईपीएस ऑफिसर एसपी हरि नारायण चारी मिश्रा बालाघाट में पोस्टेड होते हैं और उनका ट्रांसफर खंडवा होता है। हरि नारायण जी अपना चार्ज खंडवा में लेते हैं और उसी वक्त एक फाइल उन तक पहुंचती है। ये फाइल होती है एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट की, और ये मिसिंग रिपोर्ट जिनकी थी उनका नाम था प्रसन्न कुमार मिश्रा, वो फॉरेस्ट में एसडीओ थे। ये फाइल एसपी साहब के पास इसलिए आती है कि ये केस को 7 साल हो गए थे और कोई भी इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो ये केस बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट चाहिए थी जिसके लिए एसपी साहब के सिग्नेचर होने थे। तो ये फाइल जब हरि नारायण जी के पास आती है, काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐसा क्या है इस केस में कि 7 साल हो गए और ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो वो फाइल खोल के उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और जब वो फाइल पढ़ते हैं तो उनके सामने कई चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो सामने आती है वो ये कि इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 अलग अलग पुलिस के डिपार्टमेंट लगे। सीआईडी भी लगा, खंडवा की लोकल पुलिस लगी, क्राइम ब्रांच भी लगी, क्योंकि ये एक सरकारी मामला था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ का मामला था, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाया। तो ये केस क्या था? 16 जुलाई 2003 को प्रसन्न कुमार मिश्रा, जो फॉरेस्ट में एसडीओ थे, उनकी पत्नी रेखा मिश्रा खंडवा के पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और रिपोर्ट लिखाती है कि उनके पति गायब हैं और 24 घंटे से उनका कोई पता नहीं चला। मामला सरकारी अफसर का है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर, और उसी दौरान प्रसन्न कुमार मिश्रा के भाई अनुराग वो भी पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, और वो कहते हैं कि इसमें कोई साजिश है। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है, यहाँ तक कि लावारिश लाशों तक को भी पहचाना जाता है कि वो कहीं प्रसन्न कुमार मिश्रा तो नहीं है। उनकी फोटोग्राफ्स पूरे इलाके में सर्कुलेट की जाती, पर फिर भी प्रसन्न कुमार मिश्रा का कुछ पता नहीं चलता। समय बीतता जाता है, ये केस लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, क्राइम ब्रांच से सीआईडी को दिया जाता है। ऐसी 10 अलग अलग टीमों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की होती है, पर किसी को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। ये केस रिपोर्ट हुआ था जुलाई 2003 में, अब आ गया 2010, मतलब लगभग 7 साल पूरे हो गए होते, और इसी बीच ये एसपी हरि नारायण जी का ट्रांसफर खंडवा होता है और ये फाइल उनके पास आती है। हरि नारायण जी ये फाइल को अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो करीब 5 लोगों को जीरो इन करते हैं जिन पे उनको सबसे ज़्यादा शक होता है। उसके बाद पुरानी टीमें जिन्होंने इस केस पर जाँच की थी उनसे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि सीआईडी और बाकी की जितनी टीमें थी उन्होंने सब ने इन 5ों से पूछताछ पहले की हुई होती है। उस फाइल में एक जगह ये जिक्र होता है, और ये हरि नारायण जी ये लोकल पुलिस से डबल चेक भी करते हैं, कि रेखा मिश्रा जो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की वाइफ थी, उन्होंने प्रसन्न कुमार मिश्रा के ड्राइवर के साथ शादी कर ली। रेखा के 3 बच्चे ऑलरेडी थे, 2 बेटे और 1 बेटी, और उस ड्राइवर का नाम था सैयद साहब अली। तो ये बात पढ़कर एसपी साहब को थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे हो सकता है कि एसडीओ की बीवी एसडीओ के ड्राइवर से ही शादी कर लेती है। तो हरि नारायण मिश्रा जी सैयद साहब अली ड्राइवर को, रेखा को, पूछताछ के लिए बुलाते हैं, और वो पूछताछ के वक्त रेखा के साथ उनका बेटा भी आया हुआ होता है, रेखा का बेटा। इन दोनों से पूछताछ शुरू होती है तो दोनों कुछ नहीं बोलते, इनको पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता। पुलिस ने सारे हथकंडे अपना लिए होते हैं, उसके बाद भी इनसे कुछ पता नहीं चलता कि प्रसन्न कुमार मिश्रा का हुआ क्या, कहाँ गए। पुलिस थक हार गई, यहाँ तक एसपी साहब भी मायूस हो गए कि इस केस का कुछ होना नहीं है, अब इस केस को क्लोज ही कर देना होगा क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत मिल भी नहीं रहे। इस पूछताछ के दौरान रेखा के साथ उसका बेटा भी आया हुआ था जो लगभग 9 साल का था उस टाइम, जब उसके पिता गायब हुए थे वो करीब 1-1.5 साल का था। तो एसपी हरिनारायण जी अपना ध्यान इन दोनों से हटाते हैं और वो छोटे बच्चे 9 साल के बच्चे से बातचीत करना शुरू करते हैं। नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं और क्योंकि ये पुलिस अफसर थे तो उनका उस बच्चे से सवाल जवाब करने का तरीका इस तरह का था कि बच्चा अचानक एक चीज़ बोलता है और वो बोलता है कि वो अंकल मुझे हमेशा ये कहा करते थे कि तेरा भी वही हाल करूँगा जो तेरे बाप का किया। तो ये एसपी हरिनारायण जी को ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो बच्चे से फिर पूछते हैं कि क्या कहा आपने, तो बच्चा कहता कि जब भी वो अंकल को गुस्सा आता था तो वो मुझे ये कहते थे कि तेरा भी वही हाल करूँगा जो मैंने तेरे बाप का किया। ये बात सुन लेने के बाद एसपी साहब रेखा को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वो पूछते हैं कि ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है और सईद साहब अली उसको क्यों धमकाता है। फिर ये हरिनारायण मिश्रा जी रेखा पे दबाव डालते हैं और कहते हैं सच बता दो क्या हुआ है क्योंकि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद रेखा थोड़ा टूट जाती है, उसे लगता है कि भेद खुल गया है और फिर वो पूरी कहानी सुनाती है। कहानी सुन लेने के बाद पुलिस फिर सईद साहब अली के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा भेद खुल गया है और पुलिस उसे और उसके भाई करामत अली को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह जो केस क्लोज होना था क्लोज होने के कुछ दिन पहले सॉल्व हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहानी बताई रेखा ने और 7 साल से कहाँ गायब है एसडीओ। कहानी ये थी, प्रसन्न कुमार मिश्रा खंडवा में पोस्टेड थे एसडीओ फॉरेस्ट ऑफिस में, उनका ड्राइवर था सईद शाह अली जो हमेशा उनके साथ रहता था और काम के लिए उन्हें कई कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था और प्रसन्न कुमार मिश्रा को शराब की लत भी थी। तो जब प्रसन्न कुमार मिश्रा अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर होते थे, ये ड्राइवर सईद साहब अली का घर में आना जाना होता था, वो बच्चों को और रेखा को घुमाने वगैरह गाड़ी में ले जाता था, तो इस दौरान दोनों करीब आ गए और दोनों में प्यार हो गया। दोनों का प्यार बढ़ा और दोनों फैसला करते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए और ये भी कहा गया है कि दोनों ने छुप के शादी भी कर ली थी और रेखा ने अपना नाम शादी कर लेने के बाद शबनम रख लिया। अब रेखा और सईद शाह अली ने शादी कर ली और इन दोनों के बीच में एक रुकावट, एक अड़चन सिर्फ एक ही थी और वो थे एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा। और कहा यह भी जाता है कि आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए रेखा ने ही सईद शाह अली को कहा कि तुम प्रसन्न कुमार को ठिकाने लगा दो और अगर ये इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी। एक दिन सईद शाह अली और उसका भाई करामत दोनों प्रसन्न कुमार मिश्रा के दफ्तर पहुंचते हैं। पीछे से जाके सईद शाह अली रस्सी का फंदा प्रसन्न कुमार के गले में डालता है और उसे खींचता है। आगे से करामत अली उसका पैर पकड़ता है और वो रस्सी तब तक खींची जाती है जब तक दम घुटने से प्रसन्न कुमार की मौत ना हो जाए। प्रसन्न कुमार की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ये दोनों स्कूटर से प्रसन्न कुमार के दफ्तर आते हैं, रात का समय होता है, तो वे लाश को उठाते हैं और स्कूटर में बीच में रख लेते हैं। आगे स्कूटर चला रहा होता है सईद शाह अली, बीच में होती है प्रसन्न कुमार की लाश और पीछे बैठा हुआ होता है करामत अली और उस लाश को इस तरह बिठाया हुआ होता है जिससे लगे कि वो जिंदा है, वो बीच में सिर्फ बैठे हुए हैं। और वो रात के अंधेरे में वहाँ से निकल लेते हैं और वहाँ से निकल तो लेते हैं पर इनको अंदाज़ा नहीं होता है कि ना कोई प्लानिंग होती है कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। तो उसके प्रसन्न कुमार के दफ्तर से कई किलोमीटर दूर एक हाईवे है, हाईवे 12A होशंगाबाद रोड के पास, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो लाश को ऐसी जगह ठिकाना लगाना चाहते हैं कि जहाँ से वो लाश कभी मिले नहीं और प्रसन्न कुमार का कभी पता ना चले। तो जब वो स्टेट हाईवे 12A पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। वो गड्ढा था एक ब्रिज की नींव का, क्योंकि वो स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे के ऊपर एक ब्रिज बनना था तो ब्रिज के पिलर के लिए वहाँ पे एक नींव खुदी हुई थी जो बहुत गहरी थी। करीब 18 फीट गहराई थी उसकी। रात का वक्त था, शहर से बहुत दूर, आसपास कोई आज आने जाने वाला कोई था नहीं। तो वो लाश को ले जाते हैं, उस नींव में डालते हैं, उस गड्ढे में, और मिट्टी से उसको ढक देते हैं। इस तरह वो लाश उस पिलर की नींव में, जहाँ पिलर बनना था, वहाँ पर हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। इस जुर्म को तीनों ने कबूल कर लिया था, रेखा ने, सईद शाह अली ने और करामत अली ने। तो अब पुलिस को ये केस कोर्ट में पेश करना था, और इस केस को कोर्ट में पेश करने के लिए उस लाश को ढूंढना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक लाश नहीं मिलती एसडीओ की मौत को साबित नहीं किया जा सकता था, और ये तीनों आराम से कोर्ट से छूट सकते थे। तो इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की कि लाश कहाँ ठिकाने लगाई। शुरू में तो पुलिस को गुमराह करते रहे, उसके बाद पुलिस को बता देते हैं कि स्टेट हाईवे 12A उस वक्त बन रहा था, वहाँ पर एक पिलर की नींव थी, वहीं पे उन्होंने लाश को दफनाया। फिर पुलिस पूरी तैयारी से खुदाई की मशीनें लेके उस जगह पर पहुँचती है। जब लाश दफनाई गई थी तो वहाँ कुछ नहीं था, अब 7 साल गुजर गए तो वहाँ पे हाईवे बन गया था, ब्रिज बन गए थे, पिलर खड़े हो गए थे, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था लाश को ढूंढना। मशीनों से, बड़ी बड़ी खुदाई की मशीनों से वहाँ पे खुदाई शुरू होती है, और खुदाई करते करते 18 फीट नीचे तक खुदाई हो जाती है, फिर भी लाश नहीं मिलती। अब पुलिस पर परेशान, वहाँ मीडिया भी पहुँचा हुआ है, पुलिस पूरी तामझाम लेके वहाँ पहुँच गई है, और लाश नहीं मिलेगी तो पुलिस की बदनामी। ये भी बोला जा सकता है कि पुलिस इन लोगों को ज़बरदस्ती परेशान कर रही है, इनका कुछ इस एसडीओ के गायब होने में कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस फैसला करती है कि इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी और मेहनत करते हैं, और वो 2-3 फीट और खुदाई करते हैं। अब 21 फीट तक खुदाई हो चुकी होती, और अचानक जैसे ही 21 फीट पर खुदाई पहुंचती है, एक कंकाल मिलता है। अब कंकाल तो मिल जाता है, पर कंकाल एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा का ही है, वो पक्का नहीं होता। तो उसका फिर डीएनए टेस्ट कराया जाता है, और डीएनए टेस्ट कराने के बाद उसका डीएनए एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा से मैच हो जाता है। एक बीवी खुद अपने पति को मारने की साजिश रचती है अपने प्यार को पाने के लिए, और ये देखिए केस किस तरह सॉल्व हुआ। केस 7 साल तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, केस बंद होने वाला होता है, और एक एसपी की क्यूरियोसिटी कि केस तो बंद हो ही रहा है, इसको एक बार मैं पढ़ लूँ, उस फाइल को एक बार पढ़ लूँ और शायद मैं सॉल्व कर सकूँ, वो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी ही इस केस को सॉल्व करने में मदद करती है। 16 जुलाई 2010 को तीनों को अरेस्ट किया गया, रेखा, सईद शाह अली और करामत अली। फिर खंडवा लोअर कोर्ट ने जनवरी 2013 में इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस लोअर कोर्ट के फैसले को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, हाई कोर्ट का फैसला भी आया नहीं है। कोई भी अपडेट आता है तो इसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो ये थी कहानी खंडवा शहर की, किस तरह एक अफसर की ट्रांसफ़र खंडवा होती है, और केस बंद होने वाला होता है, और वो सोचते हैं कि बंद तो हो ही रहा है, इस केस को एक बार मैं भी देख लूँ। किस तरह एक 9 साल के बच्चे की एक लाइन को सुन के पूछताछ की जाती है और मुल्जिम अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तलाश इंडिया क्राइम पॉडकास्ट के 13th एपिसोड सुनने के लिए। नमस्कार।